वचन। नमस्कार श्रोताओ, सत्य वचन कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आप सब आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम के अंतर्गत पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पहला तिमोथियस नामक पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पूर्व मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मसीह महिमा हो, तेरी महिमा हो, मसीह महिमा हो, सुबह को हो, दोपहर को हो, संध्या को सारी रात्रि को, मसीह महिमा, मसीह महिमा हो, तेरी महिमा हो, मसीह महिमा।
मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से कार्यक्रम को सुनने के लिए आप तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों पहला तिमोथी की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस पत्री के द्वारा से बताता है कि व्यवस्था हमें पाप का बोध कराती है, न कि उद्धार देती है। तो आइए आज हम अपने अध्ययन को आरंभ करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें और सहायता मांगे ताकि आज के अध्ययन में हम उसकी आशीषों को प्राप्त कर सकें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन को सुनकर अपने जीवन में ग्रहण कर सकें, सीख सकें और उसके अनुसार से चल सकें। इस घड़ी हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। उनके जीवन के हरेक पाप, अपराध और गुनाह जो उन्होंने किए हैं, आप उन्हें क्षमा करें, उन्हें अपने अनुग्रह प्रदान करें ताकि वे आपके प्रेम, डर और भय में बढ़ सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी विनती है कि अपने वचन के द्वारा आप हम सब से बोले और बातचीत करें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार अवस्था में है, निराश और परेशान है या किसी प्रकार के तनाव में है। पिताजी, उन्हें भी अपनी शांति और दया दृष्टि कृपा से दे दीजिए। इस घड़ी फिर से हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों आइए आप मेरे साथ पहला तीमुथियुस की पत्री उसके एक अध्याय और उसके 19 पद को निकाल लीजिए। पहला तीमुथियुस की पत्री एक अध्याय उसके 19 पद में लिखा हुआ है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। मेरे मित्रों आपको मालूम होगा कि पिछले अध्ययन में जब हम देख रहे थे पौलुस ने तीमुथियुस को भविष्यवाणियों के बारे में और उनके अनुसार से चलने के बारे में बताया था और उसे आज्ञा सौंपी थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीही जीवन जीना इतना आसान नहीं है जितना कि कुछ लोग हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं, यह हरी बत्ती पर चलने और लाल बत्ती पर रुकने के जैसा नहीं है, यह कहीं अधिक जटिल है। हमारे व्यक्तित्व जटिल हैं और पौलुस कहता है कि हमारी मानवीय अस्थिरता और विफलताओं के कारण एक यथार्थ का खतरा उत्पन्न हो जाता है। मैं यह मानकर चल रहा हूं कि आप कहीं किसी हाथी दांत के गुम्मद में नहीं रह रहे हैं। कुछ विश्वासियों के विचार में वे इस भूमि से ऊपर धुएं और ओस से ऊपर कहीं वास कर रहे हैं, परंतु हम जिस पटरी पर चल रहे हैं और कठोर मनुष्यों के साथ तथा संसार की समस्याओं के साथ कंधा रगड़ रहे हैं, देख पाते हैं कि अस्थिरता एवं दुर्बलताएं हैं। हमारे सामने जो संकट है वह विश्वास और विफलताओं में सामंजस्य बैठाने का है। मैं एक सेवक को जानता हूं, वह प्रचार क्षेत्र से आकर एक साधारण नौकरी करने लगा। वह कहता था, परमेश्वर ने मुझे यह काम करने को दिया है। उसने सेवा कार्य के लिए 9 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और अब वह कहता है कि परमेश्वर ने उसे एक साधारण काम के लिए घर बुला लिया है। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे वास्तव में ऐसा लगता है कि परमेश्वर इस प्रकार उसकी अगुवाई कर रहा है। उसने बल देकर अर्थात जोर देकर कहा कि परमेश्वर उसकी ऐसी ही अगुवाई कर रहा है। वह बार बार यही कहता है और मुझे कहते हुए दुख होता है कि जो वास्तव में हुआ वह यह था कि उसने सेवा में विश्वास को विफलताओं से जोड़ने का प्रयास किया। यह हम सबके लिए एक महान संकट है। मेरे मित्रों, जब आप और मैं सफल नहीं होते, जब हमारे जीवन में अस्थिरता होती है, तब हमें प्रभु के पास जाना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि हम चूक गए हैं, हम खरे नहीं उतरे हैं। तीमुथियुस की पहली पत्री में हम शीघ्र ही पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मनुष्य और परमेश्वर के मध्य एक सिद्ध मध्यस्थ है, हमें उसके पास जाने से डरने की आवश्यकता नहीं है। पहला तीमुथियुस की पत्री एक अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा हुआ है उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर हैं। पौलुस अपने समय के 2 ईश्वर त्यागियों का उदाहरण देता है। वह धर्मशास्त्र के अन्य स्थान पर भी उनका नाम और उल्लेख करता है और उन दोनों ही के बारे में कहने को उसके पास कुछ नहीं है। दूसरा तीमुथियुस के पत्र 4 अध्याय उसके 14 पद में वह लिखता है, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराई की है। और आगे तब हम पाते हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है। ये दोनों पुरुष चूक गए थे, वे विश्वास का त्याग कर चुके थे। आज भी बहुत सारे विश्वासी अपने विश्वास से पीछे हट गए हैं और पौलुस की जो सेवा थी उससे भी ये पीछे हट गए थे। मेरे विचार में केवल एक प्रेरित ही इस काम को कर सकता था। वह कहता है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है। इसे हम कलिसियाई अनुशासन नहीं कह सकते या आज के अनुसार जाति बाहर करना भी नहीं कह सकते हैं। पौलुस प्रेरित होने के कारण अपना अधिकार एवं अपनी स्थिति का उपयोग वह कर रहा है। वह उन दोनों को शैतान को सौंप देता है। ऐसा ही एक स्थिति पौलुस कुरिन्थ की कलिसिया को लिखे अपने पत्र में व्यक्त करता है, जिसे हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 5 अध्याय उसके 3 से 5 पद में पढ़ते हैं। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वालों के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हों, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु के दिन में उद्धार पाए। मेरे मित्रों, यह अधिकार जो पौलुस को था वह आज हमारे पास नहीं है। हमें अधिकार नहीं कि किसी को शैतान को सौंप दें, परंतु पौलुस ने ऐसा किया था, पत्रस ने भी ऐसा किया था। मेरे विचार में यदि हम हनन्याह और सफीरा से पूछें तो वे हमें उसके प्रेरितयाई अधिकार के बारे में कुछ बता पाएंगे। आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसके 1 से 11 पद में, जहां पर हनन्याह और सफीरा के बारे में लिखा है। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 1 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 2 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है सार्वजनिक प्रार्थना और आराधना में महिलाओं का स्थान। जी हां, सार्वजनिक प्रार्थना। सार्वजनिक प्रार्थना जनता और जन अधिकारियों के लिए होती है। 1 तीमुथियुस के पत्र 2 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। पौलुस कहता है कि विश्वासियों को जन अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। मेरे विचार में उसके कहने का अर्थ है कि प्रार्थनाएं आराधना के समय की जाएं। वर्षों पूर्व एक प्रभु के दास से पूछा गया कि क्या वह सांसदों के लिए प्रार्थना करता है। उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं सांसदों को देखकर देश के लिए प्रार्थना करता हूं। पौलुस भी यही कहता है कि हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करना है और उसके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए जो हम पर अधिकार रखते हैं। इसलिए वह कहता है राजाओं के लिए, हमें अपने शासकों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्या हमें भ्रष्ट सरकार के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए? पौलुस तो कहता है कि हमें भ्रष्ट सरकार के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, हमें अपने अधिकारी के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। स्मरण रखें कि पौलुस जब यह पत्र लिख रहा था तब रोम का राजा खूनी नीरो था, परंतु पौलुस फिर भी कहता है कि हमें अपने राजा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए ताकि हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उसे ज्ञान दे, ताकि वह अच्छी रीति से अपनी प्रजा का देखभाल कर सके। आगे कहता है कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। मित्रों, आपने कहावत सुना होगा कि नहीं मामा से काना मामा ही अच्छा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इस पर कुछ लोगों को आपत्ति होगी, परंतु एक दुष्ट एवं भ्रष्ट सरकार का प्रबंध अच्छा है तो वह अराजकता से अधिक उत्तम है। कुछ लोग हैं जो राजनीति को कपटी कहते हैं और कुछ क्षेत्र में मैं सहमत भी हूं। मनुष्य ने राजनीति के अधिकार को निश्चय ही भ्रष्ट कर दिया है और उसका अनुचित लाभ उठाया है, परंतु कानून और व्यवस्था का दिखावा हुआ है। नागरिकों की सरकार परमेश्वर का वरदान है और हमें इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना आवश्यक है तथा उसके लिए प्रार्थना करना है। हम में से अनेक जन भक्ति और गंभीरता का जीवन जीने के निमित्त अपनी सरकार के लिए प्रार्थना करने से चूक जाते हैं और यही कारण है कि हम अच्छी सरकार नहीं पाते हैं। 1 तीमुथियुस के पत्र 2 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। सरकार के लिए प्रार्थना करने का एक और कारण यह भी है कि सुसमाचार खोए हुए मनुष्यों में पहुंच पाए। मेरे विचार में सच्चे विश्वासी भविष्य में सताए जाएंगे। पौलुस को भी सतावा का अनुभव हो रहा है और हुआ था, अतः वह कहता है कि विश्वासी ऐसे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। यह परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता को अच्छा लगता है और भाता भी है कि हम इन अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। मेरे प्रियो, हमारे लिए किसी विशेष व्यक्ति का चुनाव जीतना महत्व नहीं रखता है। मैंने अपने सेवा काल में कभी किसी नेता का नाम सुझाया ही नहीं कि आप उसे वोट दें। यह ना तो मेरी और ना ही किसी भी अन्य सेवक की बुलाहट है। नेता कोई भी हो, मुझे उसके लिए प्रार्थना करना है और वोट देना है कि सुसमाचार का प्रसारण बढ़े। मैं ऐसा नेता चाहता हूं कि जो खोए हुओं के लिए सुसमाचार प्रसार में संभव बनाए। यही हमारी चिंता और प्रार्थना का विषय होना चाहिए ताकि हमारा देश शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ सके। पहला तीमुथियुस के पत्र 2:5 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है। रोमी अनेक देवी देवताओं की उपासना करते थे। आज भी किसी न किसी रूप में बहुदेव पूजा किसी न किसी स्थान पर होती है। मनुष्य अनेक बातों का दास है, भोग विलास, मनोरंजन इत्यादि। आज मनोरंजन जगत उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि अनेकों का धर्म बन गया है। आज ऐसी स्त्रियां हैं जो सिनेमा सितारा बनने के लिए पल भर में अपनी मर्यादा को नष्ट कर देती हैं। ऐसे पुरुष भी हैं जो सिनेमा में नाम कमाने के लिए अपना सम्मान दांव पर लगा देते हैं। आज मनुष्य के अनेक देवता हैं, परंतु सृजनहार परमेश्वर एक ही है। लिखा है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मेरे प्रियो, पुराने नियम के युग में इसराइली लोग मंदिर जाया करते थे जहां अनेक याजक अर्थात पुरोहित थे। वे उनके मध्यस्थता से परमेश्वर से संपर्क करते थे। पौलुस कहता है कि अब एक ही मध्यस्थ है, एक ही बिचवई है जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। हमें इस पृथ्वी पर किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है, किसी सेवक की भी आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक मध्यस्थ है। मेरे मित्रों, हमें एक मध्यस्थ, एक याजक की आवश्यकता है, उस महान याजक की। अय्यूब अपने समय में दिल से पुकारता था। अय्यूब की पुस्तक 9:33 में लिखा है, हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। दूसरे शब्दों में, काश कोई होता तो परमेश्वर का हाथ पकड़कर मेरा हाथ थामता कि हमारा मेल करवाए, जिससे कि हमारे मध्य संपर्क हो और मेल मिलाप हो जाए। मेरे प्रियो, आज हमारे पास एक मध्यस्थ है। पहले नहीं था, अब है। प्रभु यीशु मसीह आ चुका है। उसका एक हाथ परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि वह परमेश्वर है। वह दूरस्थ स्थान में किसी को भी बचा सकता है, क्योंकि वह परमेश्वर है और उसने हमारे उद्धार का मूल्य चुका दिया है। वह हमारा मध्यस्थ है, क्योंकि वह मनुष्य बना। वह मेरा हाथ पकड़ सकता है, वह मुझे समझ सकता है, वह आपको भी समझ सकता है। मनुष्य की प्रत्येक भावना को वह समझ सकता है। आप उसके पास आ सकते हैं, वह आपसे अप्रसन्न न होगा, वह आपसे क्रोधित नहीं होगा, वह आपको मारेगा नहीं और न ही किसी प्रकार आपको हानि पहुंचाएगा। मेरे मित्रों, आप कहेंगे मैं विफल हूं, मैंने यह किया है, मैंने वह किया है, मैंने सब कुछ करके देख लिया है और मैं परमेश्वर की महिमा से रहित हूं। वह तो सब कुछ जानता है, वह तो अब भी आपसे प्रेम करता है और आपके गले में अपनी बाहें डालकर आपसे बात करना चाहता है, आपको शांति और आनंद की बातें सुनाना चाहता है। मेरे मित्रों, आज हम सब कुछ जानते हुए भी उसके पास नहीं आते हैं। हमारे मन में बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन सही विचार को आने से आप ना रोकें। अवश्य एक बार आप उसके पास आ करके देखें, परख करके देखें। बाइबल हमें बताती है कि परख करके देखो कि परमेश्वर कितना भला है। जी हाँ, ऐसा कोई परमेश्वर नहीं जो हमें चुनौती दे कि परख करके देखो। आज आपके पास अवसर है कि आप उसके पास आ जाएं। अध्याय 63 पद 9 में यशाया लिखता है, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। किसने? प्रभु यीशु ने। कुछ विद्वानों के अनुसार इससे उक्ति को ऐसा होना था, उनके सारे संकट में उसने कष्ट नहीं उठाया। आप चाहे जैसे भी पढ़ें, यह एक अति उत्तम बात है। शायद परमेश्वर चाहता है कि हम दोनों को ही पढ़ें, परंतु मुझे अधिक अच्छा लगता है उनके सारे संकट में उसने कष्ट नहीं उठाया। परमेश्वर जंगल में इसराइल के वंशजों के साथ था। जब कादेश बर्ना में उनसे भूल हुई, तब उसने यह नहीं कहा, अलविदा, मेरा तुम्हारा कोई अब संबंध नहीं है, तुम चूक गए। जी नहीं, वह 40 वर्ष उनके साथ जंगल में भटकता रहा। वह उनसे और उनके आगे आगे चलता था। उसने मूसा को उनके लिए निर्देश दिए कि उनका जीवन प्रतिज्ञा के देश में कैसा होगा। वह उनकी प्रतीक्षा में था और जंगल में उनके कष्टों के समय उनके साथ धीरजवंत रहा। वह पीड़ित नहीं हुआ, वह निराश होकर विफल नहीं हुआ, परंतु उनके साथ बना रहा। मेरे मित्रों, वह आज भी आपके साथ बना है, वह आपके साथ है और वह चाहता है कि आप उसकी ओर फिर जाएं। उसने मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया है और ऐसा मध्यस्थ पा लेना एक महान बात है जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। आपको उसी के माध्यम से परमेश्वर के पास जाना होगा। मुझे अपनी समस्याओं का वर्णन सुनाने से कोई लाभ नहीं होगा। जी हाँ, मैं आपके साथ सहानुभूति प्रकट नहीं कर पाऊंगा, मैं आपकी समस्या को वास्तव में अंतर्ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, परंतु वह कर पाएगा, वह समझेगा। वह एक मनुष्य है, वह हमारा मध्यस्थ है। उसने अपना हाथ मेरे हाथ में रखा, मैं अपना हाथ उसके हाथ में नहीं रख सकता। मेरे मित्रों, वह इस पृथ्वी पर आया और अपना हाथ मेरे हाथ में रखकर मुझे थाम लिया, परंतु वह परमेश्वर को भी एक हाथ से पकड़े हुए है, क्योंकि वह परमेश्वर है, उसने हमारा मेल करवाया है। इस मध्यस्थ के बारे में संसार को जानना है, क्योंकि उद्धार का केवल एक ही मार्ग है। प्रेरितों के काम 4:12 में पत्रस अपने समय के धर्म गुरुओं से कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। मेरे मित्रों, यह बहुत ही स्पष्ट है कि यीशु के द्वारा ही उद्धार है। प्रभु यीशु ही एकमात्र मार्ग है, क्योंकि उसने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। परंतु महान बात तो यह है कि वह आपको सीधा परमेश्वर के पास ले आएगा, परंतु शर्त यह है कि आप उसकी ओर फिरें। यदि आप उसकी ओर नहीं फिरेंगे तो वह आपको जबरदस्त पकड़ करके परमेश्वर की निकटता में नहीं लाएगा। जी हां, आपकी इच्छा होनी है, आपको चुनाव करना है। मुझे एक बार किसी महानगर में जाने के लिए किसी ने कहा कि वहां का एक ही मार्ग है जिससे चूक जाने पर मैं समस्या में पड़ जाऊंगा। बड़ी कठिनाई के बाद मुझे वह एकमात्र मार्ग मिला, परंतु मैं अपने गंतव्य तक पहुंच ही गया। मैं उस व्यक्ति का आभारी हूं, मैं अति आभारी हूं कि हमें परमेश्वर के पास आने का भी एकमात्र मार्ग बताया गया है, एक ही मध्यस्थ है। जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने मुझे इस महानगर में जाने के लिए मार्ग बताया, उसी प्रकार से आज मैं आपको मार्ग बता रहा हूं कि प्रभु यीशु के द्वारा ही आप स्वर्ग जा सकते हैं। अब निर्णय आपका है कि आप स्वर्ग यीशु के द्वारा से जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक ही मार्ग है जो स्वर्ग ले जा सकता है। मेरे प्रियो, वही है जो हमें परमेश्वर से मिला सकता है। यीशु हमें परमेश्वर के निकट ला सकता है, क्योंकि वह परमेश्वर है और मनुष्य भी है। प्रभु यीशु जो मनुष्य है, जो 2000 वर्ष पूर्व वह इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया, हमारे बीच में रहा और हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि हमारे लिए मार्ग तैयार करे और हमें स्वर्ग में ले जाए। मेरे मित्रों, आज हम सबके पास में एक सुंदर अवसर है कि हम प्रभु यीशु के द्वारा से उस स्थान पर पहुंच जाएं, जिसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ प्रभु यीशु के पास आना है। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं। जी हाँ, जब हम उसके पास आएंगे, उस द्वार में होकर के जाएंगे, तो हम प्रभु परमेश्वर के पास चले जाएंगे। क्या हम चाहते हैं कि हम उसके द्वारा से उसके पास जाएं? यदि हाँ, तो आज हम निर्णय लें, प्रभु से प्रार्थना करें और मांगे कि प्रभु हमारी सहायता करें। मैं आपके जीवन के बारे नहीं जानता, लेकिन मैं यह कहूंगा कि आज आप एक सही निर्णय अपने जीवन के लिए ले लें। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा आपने अवश्य ही आशीष प्राप्त किया है और आपने अपने जीवन के लिए उत्तम निर्णय भी लिया है। प्रभु आपको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
मसीह महिमा हो, तेरी महिमा हो, मसीह महिमा। मसी महिमा हो, महिमा ही महिमा, मसी महिमा। ओ सुबह को, ओ दोपहर को, ओ संध्या को, सारी रात्रि को, म मसीह महिमा, वो संत